Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 4, presented by Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Dhyaye Nityam Mahesham Rajatagiri Nibham चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परसमृगवरा वीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर् व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरम् पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महंतं गोविंदयोगींद्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदिदिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ॐ शान्तिः 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 शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ नमो हराय हराय नमः ॐ नमो हराय हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ नमो हराय हराय नमः ॐ नमो हराय भवाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ नमो भवाय भवाय नमः ॐ नमो भवाय भवाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ नमो भवाय
भवाय
बाबाय नमः ओम नमो बाबाय मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम नमो मृडाय मृडाय नमः ओम नमो मृडाय मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम नमो मृडाय मृडाय नमः ओम नमो मृडाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय भज मन शिव शिव निरन्तरम् जप मन शिव शिव निरन्तरम् भज मन शिव शिव निरन्तरम् जप मन शिव शिव निरन्तरम् रट मन शिव शिव निरन्तरम् स्मर मन शिव शिव निरन्तरम् रट मन शिव शिव निरन्तरम् स्मर मन शिव शिव निरन्तरम् ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव ॐ ॐ ॐ कृष्ण यजुर्वेदीय मंत्रोपनिषद अंतर्गत श्वेताश्वतर उपनिषद के चतुर्थ अध्याय में तृतीय मंत्र है। अभ्यास कर लो। तम स्त्री तम पुमानसी तम कुमार उतवा कुमारी तम जीर्णो दंडेन वंचसि
तम जीर्णो दंडेन वचसि
तम जातो भवसि विश्वतो मुखः
तम जातो भवसि विश्वतो मुखः
नीलः पतंगो हरितो लोहिताक्षस्
नीलः पतंगो हरितो लोहिताक्षस्
तडिद्गर्भरितवः समुद्राः
तडिद्गर्भरितवः समुद्राः
अनादिमत्त्वं विभुत्वेन वर्तसे
अनादिमत्त्वं विभुत्वेन वर्तसे
यतो जातानि भुवनानि विश्वा
यतो जातानि भुवनानि विश्वा
अजामेकाम् लोहितः शुक्लकृष्णाम्
अजामेकाम् लोहितः शुक्लकृष्णाम्
बहवः प्रजाः सृजमानाम् स्वरूपा
बहवः प्रजाः सृजमानाम् स्वरूपः
अजो एको जुषमाणोऽनुशेते
अजो एको जुषमाणोऽनुशेते
जहत्तेनाम् भुक्तभोगामजोऽन्यः
जहात्येनाम् भुक्तभोगामजोऽन्यः द्वासुपर्णासयुजासखाय
समानम् वृक्षम् परिषस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलम् स्वादुवत्ति अनन्नश्नन्नयो अभिचाकशक्तिः समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मुह्यमानः
जुष्टं यदा पश्यत्यनन्यमीशमस्य
अस्य महिमानमिति वीतशोकः वैदिक दर्शन की विशेषता है कि वह मूल तत्व एक मानता है जिसको ब्रह्म कह देते हैं, जिसको परमात्मा कह देते हैं, एक मानते हुए भी वह एक अनेक हो सकता है। ये बात भी वेदांत दर्शन सभी साधकों को स्पष्ट करता है। अनेक होते हुए भी एक रहने में कोई आपत्ति नहीं, एक होते हुए भी अनेक होने में कोई आपत्ति नहीं। यही वैदिक दर्शन की विशेषता है। और लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते। एक होगा तो वह हमेशा एक होगा, अनेक हो ही नहीं सकता है, और अनेक होगा तो वह अनेक ही रहेगा, एक नहीं हो सकता। लेकिन वैदिक दर्शन की यह विशेषता है कि एक होते हुए अनेक हो सकता है और अनेक होते हुए भी वह एक रह सकता है। इस बात को उपनिषद आदि स्पष्ट कर रहे हैं। त्वम स्त्री त्वम पुमानसी, ये मंत्र उसी बात को कह रहे हैं। व्यवहार का जो साधन, व्यवहार का जो आधार है, वह है भेद, अनेक। क्योंकि भेद और अनेकता को जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक व्यवहार चल नहीं सकता, व्यवहारिक सत्ता का अस्तित्व नहीं रह सकता। इसलिए आप लोगों को कई बार महात्माओं ने समझाया है कि तीन प्रकार की सत्ता है। एक पारमार्थिक सत्ता, दूसरी व्यावहारिक सत्ता और तीसरी प्रातिभाषिक सत्ता। पारमार्थिक सत्ता एक है, व्यावहारिक सत्ता अनेक है और प्रातिभाषिक सत्ता काल्पनिक है। हालांकि व्यावहारिक सत्ता भी काल्पनिक है, परंतु जिसको केवल व्यवहार काल में ही उसकी सत्यता की प्रतीति होगी, व्यवहार के पश्चात उसकी सत्यता नहीं रहेगी। प्रातिभाषिक उसको कहते हैं कि जिसको व्यवहार में भी आप सत्यता सिद्ध नहीं कर सकते। जिसको व्यवहार अवस्था में भी सत्यता स्वीकार नहीं कर सकते, जिसकी सत्यता सिद्ध नहीं कर सकते हैं, तो उसको परमार्थ में सत्यता सिद्ध होगा ये कल्पना भी नहीं कर सकते। उन वस्तुओं को प्रातिभाषिक कहा गया है। ये मंत्र व्यावहारिक सत्ता को स्वीकार करके और इस व्यवहारिक सत्ता में भी परमात्मा का अस्तित्व है, ये सिद्ध करने के लिए ये मंत्र है। सबसे पहला मंत्र परमात्मा को एक सिद्ध करने के लिए पारमार्थिक सत्ता को स्वीकार कर लिया गया। कल की व्याख्या में जो द्वितीय मंत्र की व्याख्या की थी, वह अधिदैव को परमात्मा रूप है ये मानने के लिए कहा गया। आप लोगों ने कई बार वेदांत सुना है और उस वेदांत सुनने की प्रकरण में, प्रक्रिया में, तीन वस्तु के बारे में कई बार सुना है, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदिभौतिक। ये जो तीनों चीज हैं वह व्यावहारिक सत्ता के हैं। आदिदैविक सत्ता वाले पदार्थ भी व्यावहारिक सत्ता के हैं और आदिभौतिक सत्ता वाले पदार्थ भी व्यावहारिक सत्ता के हैं और आध्यात्मिक सत्ता वाले वस्तु भी व्यावहारिक सत्ता के लिए हैं। चाहे वह आदिदैविक कोटि के हों, चाहे वह आदिभौतिक कोटि के हों, चाहे वह आध्यात्मिक कोटि के हों। देवता आदि की अवधारणा आदिदैविक अवधारणा है, वह भी व्यावहारिक सत्ता का है। पारमार्थिक सत्ता में देवताओं का अस्तित्व नहीं है। इसी तरह आध्यात्मिक वस्तुओं की जो अवधारणा है वह भी व्यावहारिक सत्ता के लिए है। पारमार्थिक सत्ता में आध्यात्मिक विभेदता नहीं है। इसी प्रकार से आदि भौतिक पदार्थों की जो भिन्न भिन्नता की अवधारणा है वह व्यावहारिक सत्ता के लिए है, पारमार्थिक सत्ता के लिए नहीं है। आदि भौतिक पदार्थों की विभेदता पारमार्थिक सत्ता में है ही नहीं। कल के मंत्रों में यही बताया गया था कि तदेव अग्निस् तदादित्यस्तदा तद्वायु तदु चंद्रमा तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तदापस तत्प्रजापति, ये सब आदिदैविक वस्तुएं हैं। अग्नि भी आदिदैविक वस्तु है, अग्नि देवता। वायु भी आदिदैविक पदार्थ है, वायो देवता। उपनिषद ने स्वयं कहा है वायु देवता कोटि का है। इसी प्रकार से जल भी आदिदैविक कोटि का है और चंद्रमा आदिदैविक कोटि का है। शुक्र आदिदैविक कोटि का है, ब्रह्मा हिरण्यगर्भ प्रजापति ये सब आदिदैविक कोटि के हैं। ये सब जितने भी आदिदैविक हैं वही एक ही अनेक होकर आदिदैविक रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। तब किसी को यह भ्रांति न हो जाए कि वो परमात्मा आदिदैविक होकर बैठा है तो अध्यात्म में परमात्मा की कोई भूमिका नहीं है। ये भ्रांति को हटाने के लिए कहा कि अध्यात्म जो है वो सब भी वही परमात्मा का स्वरूप है। इस बात को बताने के लिए तृतीय मंत्र है, तम स्त्री ही हे परमात्मा। दुनिया वाले ये जाने या न जाने, दुनिया वाले माने या न माने, श्वेताश्वतर ऋषि ये कहते हैं कि मैं ये मानता हूं और जानता हूं, दुनिया में जितने भी स्त्री पद के वाच्य हैं वह सब तुम्ही ही हो। श्रद्धेय स्वामी अखंडानंद जी ने इस मंत्र की बड़े मजाक की या व्याख्या की है। आजकल अधिकार को लेकर लड़ाई करते हैं, समान अधिकार होना चाहिए, सभी को अपना अधिकार मिलना चाहिए। और ये बहुत बड़ा विरोध चलता रहता है कि पुरुष समाज, पुरुष प्रधान समाज, मनुष्यों ने हमेशा स्त्रियों को उपेक्षा की है, उनके अधिकारों को उनसे वंचित किया है, उनका तिरस्कार किया है, उनका अपमान किया है। हम वैदिक सनातन धर्मावलंबियों के प्रति सबसे बड़ा आक्षेप यही है, आज के समाज में स्त्रियों का बहुत अपमान किया गया है। स्वामी जी कहते हैं कि कहां अपमान किया है, वेद ने तो सबसे पहला महत्व दिया है उनको, कौन स्त्री। दूसरे नंबर में तब जाकर कहा कि तुम पुमानसी, ध्यान से सुन लो, इस मंत्र के हिसाब से तो वह परमात्मा अध्यात्म बनने के क्रम में सबसे पहले स्त्री बना हुआ है, क्योंकि पहले नंबर में स्त्री को रख दिया गया है। तो स्वामी जी कहते हैं वैदिक धर्म की विशेषता है, स्त्री को आगे किए बिना हमारा वैदिक धर्म चलता ही नहीं है। तब फिर ये कैसे आरोप किया जा रहा है, आक्षेप लगाया जाता है वैदिक सनातन धर्म के प्रति कि महिलाओं की, स्त्रियों की उपेक्षा की गई है, अपमान किया गया, तिरस्कार किया गया है। यदि ऐसा होता तो ये श्रुति ये बात कहती नहीं। सबसे पहले तुम पुमानसी, तुम स्त्री असी, दूसरे नंबर में स्त्री को कह देना चाहिए, पहले तुम पुरुष हुए हो तब उसके बाद स्त्री हुए हो। श्रुति क्रम से रख रही है कि पहले अध्यात्म बनने के क्रम में सबसे पहले तुम स्त्री बने हो, क्योंकि जो अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत बनने के लिए उस परब्रह्म परमात्मा अर्थात निर्गुण निर्विशेष शुद्ध जो अद्वितीय ब्रह्म है, उसको सबसे पहले स्त्री का ही सहारा लेना पड़ता है। तो प्रकृति कहो, माया कहो, वो तो क्या है, स्त्री तो है। अब उसके सहारे से जो बनेगा, जो उपाधि वह धारण करेगा और जो रूप धारण करेगा, तो वह स्वाभाविक रूप में स्त्री प्रधान रूप ही होगा। यहां तक कि कुछ संतों ने तो कह दिया है वृंदावन में कि वृंदावन के भूमि में पुरुष केवल एक है, बाकी सभी स्त्रियां हैं। संतों ने यहां तक कह दिया है, पुरुष तो केवल एक परमात्मा वासुदेव हैं, श्री कृष्ण हैं, वासुदेव हैं, परमात्मा हैं। उसके अलावा वृंदावन की भूमि में दूसरा पुरुष रह ही नहीं सकता है। अब उन संतों ने ये बात कही है तो वेदांत की दृष्टि से ही कही है। क्योंकि जितनी भी वस्तु हैं वे सब पुरुषवाची, उनके लिए पुरुष होने की जो उपाधि है, उस उपाधि का जो आधार है वही प्रकृति है। तो फिर पुरुष कहां से बनेंगे, ये कौन बनेगा पुरुष? आपको पुरुष बनने के लिए जो उपादान कारण चाहिए, वो उपादान कारण तो प्रकृति है, स्त्री का है। तो कहां से आप पुरुष बनेंगे? तो कहते हैं कि सब के सब वृंदावन में जितने भी हैं सब स्त्री हैं, एक पुरुष तो एक कृष्ण है और सब उनकी सखा हैं, सब स्त्रियां हैं। वेदांत की दृष्टि से वो भी ठीक है, क्योंकि जितने भी व्यक्त अध्यात्म हैं, उपाधि है, प्रकृति के कार्य हैं, माया के कार्य हैं। उपादान कारण जिस रूप का होगा, कार्य भी वही रूप कहलाएगा। उपादान कारण यदि मिट्टी होगी तो उससे बना हुआ तमाम पदार्थ मिट्टी रूप ही होंगे। उपादान कारण यदि सुवर्ण होगा तो उससे बने हुए सारे पदार्थ सुवर्ण रूप होंगे। जब उपादान कारण प्रकृति स्त्रीवाची है तो फिर उसका कार्य पुरुष कहां से हो सकता है। और वास्तव में कहा जाए तो वृंदावन में पुरुष तो केवल आदि सत्ता से बैठा हुआ है, पूर्ण सत्ता से पुरुष नहीं है। स्त्री तो पूर्ण सत्ता से जो है सो है। वृंदावन में भगवान जो श्री कृष्ण जो विचरण करते हैं, जिनको पुरुष कहा जा रहा है, उनकी जो उपाधि है वो उपाधि भी स्त्री का ही है। शुद्ध पुरुष तो वृंदावन में रह ही नहीं सकता है, केवल वृंदावन में नहीं रहेगा शुद्ध पुरुष तो। आप वेदांत सुनते हो इसलिए समझ में आ जाएगी आपको। शुद्ध पुरुष का अर्थ ब्रह्म, परमात्मा, निर्विशेष, उपाधि रहित। उपाधि रहित तो जो परमात्मा है, आत्मा है, चैतन्य है, उसको तो आप पुरुष भी नहीं कह सकते, स्त्री भी नहीं कह सकते। शुद्ध ब्रह्म तो केवल सत्ता मात्र है। सत्ता को तुम क्या कहोगे? सत्ता को तुम क्या कहोगे? कपास को तुम क्या कहोगे? पॉइंट कहोगे, कोट कहोगे कि साड़ी कहोगे कि ब्लाउज कहोगे? कपास को है? कपास को क्या कहोगे? कपास को स्त्री के लिए बना है कहोगे कि पुरुष के लिए बना है कहोगे? कपास तो न पुरुष है न स्त्री है, कपास तो कपास है। उससे जब धागा बनेगा, धागा बनने के बाद साड़ी बनेगी, तब जाकर वह स्त्री के लिए होगा। उससे जब धागा बनेगा, धागे के बाद जब कपड़ा बनेगा, कपड़े के बाद जब पॉइंट और शॉर्ट बनेगा, कमीज बनेगा, तब जाकर वह पुरुष के लिए होगा। अन्यथा कपास में आप किसके लिए क्या देखोगे? तुम कपास में स्त्री पुरुष का विभाजन कपास में नहीं कर पाओगे। कार्य के रूप में ज्यों ज्यों परिणत होता जाएगा, प्रयोजन के रूप में ज्यों ज्यों उपाधि परिवर्तित करता जाएगा, तब तक उसकी संज्ञा बदलती जाएगी, तब आप कहोगे कि पुरुष है, ये स्त्री है, ये नपुंसक है इत्यादि। ये सब उपाधि में है, जहां उपाधि नहीं है वहां ये भाव नहीं है। लेकिन ये जो बात मंत्र इस श्रुति के द्वारा ये उपनिषद कह रहे हैं, वह उपाधि से अनेक हुए हुए रूपों को आपको स्मरण करा रहे हैं। तुम स्त्री, स्त्री रेव तुम, हे परमात्मा तुम ही स्त्री हो। तब श्रुति जब ये बात कह रही है, इस तरह हमें अनादिकाल से समझा रहे हैं, तो जब वेद को प्रमाण मानने वाला दर्शन और धर्म और संप्रदाय स्त्री का उपेक्षा, स्त्री का तिरस्कार या स्त्री को अपमान कैसे कर सकता है? यदि कोई करता है तो वह वैदिक सनातन धर्म की महिमा को, मर्म को नहीं समझता है। स्वामी जी तो कह रहे थे व्याख्या में, इसकी टीका में देख रहा था, उनकी व्याख्या को पढ़ रहा था, अरे राधा कृष्ण, सीता राम, लक्ष्मी नारायण, ये तो स्त्री प्रधान समाज है वैदिक सनातन धर्म। तो भाई उपनिषद में भी कहा है, देवताओं के गणना में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, लेव जी सबसे पहले मातृदेव कहा, तब जाकर पितृदेव कहा। श्रुति का क्रम है। और यदि पुरुष प्रधान होता तो पहले पितृदेवो भव, फिर बाद में मातृदेवो आता। क्रम में रख दिया, पहले मातृदेवो भव, फिर बाद में पितृदेवो भव। ये वास्तव में एक बालक भी समझ सकता है कि तुम्हारी मां तुम्हारे लिए देवता है, और वो बालक भी यह समझता है कि मेरी मां मेरे लिए वास्तव में देवता है।